ॐ शांति, ॐ शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। पिछले रविवार को सीजन की अंतिम मुरली थी, 2003 और 4 इस सीजन की अंतिम मुरली थी और आज से 2004-05 इस सीजन की मुरलियां शुरू हो रही हुई है। तो सीजन की पहली मुरली है 2/11/2004, 4 और 5 की सीजन। बाबा ने इस मुरली में कैसे बैलेंस हमारा हो वो सिखाया है। वैसे उस दिन साकार मुरली में भी सुना कि प्रेम और ज्ञान दोनों का बैलेंस चाहिए। बाबा पहले ज्ञान का सागर है या प्रेम का सागर है? तो वास्तव में दोनों को मिला सकते हैं। बाबा हमें प्रेम से ज्ञान देते हैं, प्रेम से ज्ञान देते हैं। तो बाबा प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर दोनों है। और आज बाबा ने बैलेंस बताया स्नेह और शक्ति में। बाबा से जितना हमारा स्नेह होगा उतनी ही हम शक्ति प्राप्त कर सकेंगे बाबा से। अगर शक्ति नहीं है इसका मतलब वो स्नेह नहीं है, क्योंकि स्नेह अगर है तो उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे। स्नेह अगर है तो उनके लिए त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्नेह अगर है तो आज्ञाकारी होंगे, और अगर त्याग है, आज्ञाकारी है, तो ऑटोमेटिकली शक्ति का अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने स्नेह और शक्ति को मिलाया है। अगर शक्ति का अनुभव नहीं होता इसका मतलब स्नेह भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? स्वार्थ होगा, क्योंकि स्नेह में स्वार्थ नहीं होता है। स्नेह में तो त्याग होता है, पर जहां स्वार्थ होता है ना, वो दिखावा होता है स्नेह का, पर है अंदर में स्वार्थ। पर सच्चे स्नेह में स्वार्थ नहीं होता है, वहां तो कुर्बानी होती है। तो बाबा ने कहा है स्नेह और शक्ति का अनुभव साथ साथ। वो कैसे होगा? जब जिससे स्नेह है उसकी आज्ञा पर चलेंगे, उनके कदमों पर चलेंगे, तो शक्ति का ऑटोमेटिकली अनुभव होगा। वो शक्तियां जी हजूर करेंगे, क्योंकि हजूर सामने है। हजूर को शिव बाबा हजूर है, तो हजूर सदा हाजिर है, तो फिर शक्तियां भी हाजिर है। अगर शक्तियां हाजिर नहीं, माना हुजूर भी हाजिर नहीं है। तो आज की बहुत सुंदर मुरली है। तो एक है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। फिर बाबा कहते हैं स्व उपकारी और परोपकारी का भी बैलेंस हो। हम दूसरों का उपकार करने जाते हैं, लेकिन स्वयं में तो शक्ति भरते नहीं है। स्वयं के प्रति भी शक्ति भरनी होगी ना। तो हम देते तब जा सकते हैं जब हम भी भरपूर होंगे। अगर हम ही भरपूर नहीं है तो दे भी कैसे सकेंगे। तो स्व उपकार और परोपकार इसका भी सुंदर बैलेंस हो। तो ये बाबा का ज्ञान पूरा बैलेंस का ज्ञान है। दुनिया में या तो एकदम भौतिकवादी है या तो एकदम सन्यासी है। बाबा हमें कहते हैं भौतिकवादी भी नहीं बनना है और एकदम सन्यासी भी नहीं, सब छोड़ देना है, पर सब कुछ करते हुए न्यारा बनना है, ये बैलेंस है। तो आज की बाबा की मुरली बहुत ही गहरी है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 23/3/2025 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 2/11/2004 की, पहली मुरली है सीजन की। स्व उपकारी बन अपकारियों पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। स्व उपकारी बन अपकारी पर भी उपकार करो, सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हम सब स्नेही बच्चे बैठे हैं, तो स्नेही तो सभी है। जब बाबा पूछते हैं बाबा से कितना स्नेह है, तो सब दोनों हाथ ऊपर करके और कहते हैं बहुत स्नेह है। देखो कर रहे हैं पीछे दोनों हाथ ऊपर, भाई हाथ ऊपर करो, दो बाबा से कितना स्नेह है, दोनों हाथ ऊपर उठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास पर, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं ये अनुभव करा रहा है। भले वो दूर है, लेकिन दूर वालों को अभी बाबा से बहुत स्नेह है, तो वो भी अपने आप को बाबा के समीप अनुभव करते हैं। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। जिससे स्नेह होता है उसको अपने समीप अनुभव करते हैं। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हरेक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। ये बाबा ने नोटिस किया हर एक के दिल में बाप दादा के लिए स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। मैं कई बाबा देखती ना, माताएं आती है बाबा से इतना प्यार, बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे कहते कहते जाती है, तो कितना स्नेह समाया हुआ है। तो हर एक के दिल में मेरा बाबा इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, स्नेह ही माया जीत बना रहा है। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है, वहां माया आ नहीं सकती है अगर दिल से बाबा से स्नेह है तो। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है, सभी ने हाथ उठाया, दो दो हाथ उठाए। तो स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास है। एक है स्नेह, अभी स्नेह के साथ क्या चाहिए, एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। अब वो कितनी है अपने अंदर वो चेक करना है, तो बाबा ने उसके लिए चेकिंग कैसे करनी है वो बताया। तो एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई है। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, उतनी शक्तियां भी समाई हुई है? बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है। बाबा ने कोई पक्षपात नहीं किया कि किसको कम शक्ति बाबा ने दी और किसको ज्यादा शक्ति बाबा ने दी, नहीं। तो सब बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी है, मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है। किसको सर्व शक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है, मास्टर सर्व शक्तिवान सबको बनाया है। सब यही कहते हैं ना, हम मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो सबको मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्व शक्तिवान कहते हो ना, तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हर एक अपने में सर्व, अब इसमें हाथ उठाओ जो अपने आप को समझते मैं सर्व शक्तियों का अनुभव करता हूँ या करती हूँ, हाथ उठाओ। अच्छा, सर्व शक्तियां, अच्छा वेरी गुड। अगर है तो बाबा ने देखो परीक्षा लिए, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है, क्योंकि अगर है तो फिर अधिकार है उन पर, जब चाहो तब वो आनी चाहिए शक्ति। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है, सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है तो अपने वर्षे पर अधिकार है, है अधिकार? फिर बाबा ने पूछा, है अधिकार? टीचर्स बोलो, है अधिकार? सोच के बोलना। हाथ तो उठा लिया, हाँ अधिकार है। फिर बाबा कहते सोच के बोलना। अच्छा, पांडव अधिकार है? है। हाँ देखो, दो चार हाथ उठा रहे, पांडव अधिकार है, है या कभी कभी है? अब ये प्रश्न भी आगे है, चलो अधिकार तो है लेकिन वो सदा है या कभी कभी है अधिकार? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वो शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर ऐसे कहती है वो शक्ति, जी हजूर मैं हाजिर हूँ, वो शक्ति ऐसे कहती है। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ये है वो शक्तियां आपके हमारे पास है तब कहेंगे। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा तो दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना। कौन सा है वर्षा? हमारा ज्ञान गुण शक्तियां, ये वर्षा भी है तो ये खजाने भी है, ये अधिकार भी है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया है ना, तो अपने पर तो अधिकार होता है। अगर अपना बनाया है तो अपनी चीज पर तो अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए, अधिकार होता है तो जिस समय चाहिए उसको हम यूज कर सकेंगे ना। तो जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए, इसको कहेंगे अधिकार। मानो, अब बाबा मिसाल देते हैं, मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है। अब कितनी बातें होती है लेकिन मैं इसको समा दूं, ये नहीं मैं सबको वर्णन करूं लेकिन समा दूं, तो बाबा कहते हैं मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को। अब सुन लिया, अब देख लिया सब जो कुछ हुआ, परंतु अब तो ऑर्डर किया कि मुझे किसको बताना नहीं है, समाना है, तो ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हजूर हो जाती है शक्ति, वो जी हजूर हो जाती है, समा लेते हो, या आप जरूर एक को तो कहेंगे क्योंकि अंदर में समाना मुश्किल हो जाता है, तो एक को तो बता ही देंगे, फिर उनको कहेंगे आप किसी को बताना नहीं, कहेगा ठीक है नहीं बताऊंगा, अब उससे भी अंदर आ नहीं जाएगा, वो एक को बताएगा दूसरे को, कहेगा किसको बताना नहीं, आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा, सबको पता चल जाएगा, तो समाने की शक्ति कहाँ है। तो बाबा कहते हैं हो जाती है तो कान ढिलाओ, अब हो जाती है समाने की शक्ति, आ जाती है तो हाथ तो कान ढिलाओ, सिर ऐसे करो, नहीं कोई नहीं कान ढिला रहा है हो जाती है तो कान हिलाओ, अच्छा हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो थोड़े हाथ हिला रहे हैं, कभी कभी होती है या सदा होती है, अब हाथ तो हिलाया कान भी हिलाया, पर कभी कभी समाने की शक्ति होती है या सदा होती है, समाने की शक्ति हाजिर होती है। हाँ अभी बाबा उसका और विस्तार कर रहे हैं, चलो कोई कहे हाँ समाने की शक्ति हाजिर है, तो समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बार समा लिया और 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है। अब 10 बार तो समा लिया, किसी को नहीं बताया, मेरे सामने ये परीक्षा आई है, चलो मैं किसी को नहीं बताती हूँ, सहन कर लेती हूँ, समा लेती हूँ, पर जब बार बार सहन करना समाना, तो 10 बार तो कर लिया, अब 11वीं बार तो होता नहीं है, तो 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है, सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे, करना तो चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो, समा नहीं सके और गुस्सा गया, हाँ थोड़ा कुछ हाथ भी चला दिया, कुछ ना कुछ हो गया, तो बाबा कहते माना समाया नहीं, तो बाबा कहते हैं लेकिन ये हो गया, ये ऐसा नहीं हो, इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है सर्वशक्तियों का, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबर वार हो जाते हैं, 10 बार सहन किया समा लिया पर 11वीं बार नहीं कर सके और रिएक्ट कर लिया, सामना कर लिया, तो बाबा कहते हैं उसमें नंबर वार है, सदा और सहज हो और नेचुरल हो, सदा भी हो सहज भी हो और स्वाभाविक भी हो, नेचर हो, ये हमारी नेचर हो, उसकी विधि है, जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं, तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती है, किसके आगे सर्व शक्तियां हजूर हाजिर करेगी, जो श्रीमत पर हाजिर हजूर करता है, सदा श्रीमत पर चलता है, उसके आगे शक्तियां भी हाजिर हजूर करती है, हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर, अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती, श्रीमत पर नहीं चलते तो हर शक्ति कैसे जी हाजिर करेगी, अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है, उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं, वो शक्ति आपके अधिकार में नहीं होती है। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा, नंबरवार है। उसी समय बुलाया और वो शक्ति हाजिर हो जाए, वो नहीं होती है, तो नंबरवार है। सभी नंबर वन नहीं है, नंबरवार है, और सदा सहज भी नहीं है, नंबरवार है, अधिकार पूरा नहीं है और वो सहज भी नहीं है। कभी कभी सहज हो जाती, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। अब देखो भगवान के जाते थे मंदिर में, अपनी कितनी कमजोरियां वर्णन करते हैं, कितनी कमजोरियां, मैं ये हूँ, पतित हूँ, ये हूँ, ये पाप किया, सब मन में भगवान को कह देते। लेकिन भगवान थोड़ी किसी और को कहता ये मेरा भक्त ऐसा है, उसके लिए तो सब भक्त आएंगे, अपनी अपनी कमी कमजोरी बता देंगे, लेकिन भगवान कैसे सब समा लेता है। इसीलिए कहा जाता है सच्चे सच्चा दोस्त तो एक भगवान ही है। आपके अंदर में जो कुछ है वो भगवान को बताओ, और किसी को मत बताओ, और किसी को बताएंगे तो वो आउट कर देगा, वो नहीं समा सकेगा। भगवान को बताओ, भगवान सब समा लेता है। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा तो हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं, और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का, है ना, सभी का लक्ष्य कि हमको बाप समान बनना है। समान बनने का लक्ष्य है वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है, सबका एक ही लक्ष्य है समान बनना, नंबरवार बनना है ये लक्ष्य नहीं है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, तो चेक करो एक सर्वशक्तियां है, एक बात में क्या चेक करो कि सर्वशक्तियां है, फिर सर्व पर अंडरलाइन करो, खाली पूछो नहीं अपने आप से कि सर्वशक्तियां है, और अगर समझते हैं तो अंडरलाइन करो। सर्व गुण है, पहले सर्व शक्तियां है ये अपने आप से पूछो, फिर अपने आप से पूछो सर्व गुण है, फिर तीसरी बात क्या पूछो अपने आप से, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति कभी कोई पर स्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती है। पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना, वो परिस्थिति ने हमारे ऊपर विजय पाली और हम डावाडोल हो गए, परिस्थिति के वश हो गए। तो बाबा कहते हैं अगर वो विजय प्राप्त कर लेती है परिस्थिति तो उसका कारण जानते हो ना, क्यों वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी अंदर की स्थिति डावाडोल हो जाती है, तो उसका कारण क्या है, स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है, अंदर शक्ति नहीं है इसीलिए परिस्थिति वार कर देती है। तो स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। तो सदा स्वस्थिति विजयी हो, उसका साधन क्या है, अपने अंदर की स्वस्थिति विजयी हो तो परिस्थिति हमारे ऊपर विजय नहीं पाएगी। उसका साधन क्या है, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस, सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है, जिसको अपने प्रति स्वमान है वो दूसरे को भी सम्मान जरूर देगा, पर अपने लिए ही स्वमान नहीं है, वो स्वमानधारी नहीं है, अपने अंदर हीनता की भावना है, तो हीनता की भावना है या अभिमान की भावना है वो सच्चा स्वमान नहीं है, तो दूसरों को सम्मान भी नहीं देंगे। तो सम्मान देना, वास्तव में किसी को भी सम्मान देना, देना नहीं है, अगर देते हैं सम्मान, ये सम्मान देना नहीं है, ये सम्मान देना माना लेना है। क्योंकि आप सम्मान देंगे तो दूसरा भी सम्मान देगा। आप किसी को सम्मान देंगे ही नहीं तो वो क्यों देगा आपको सम्मान। तो अगर किसी से सम्मान चाहते हो तो आप सम्मान दो तो सम्मान वो देगा। तो बाबा कहते हैं सम्मान देना माना सम्मान लेना। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। क्योंकि सम्मान देते हैं तो दूसरों के दिलों में हम सम्मानीय अपने आप ही बन जाते हैं। तो सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। तो अपने से भी ज्यादा ब्रह्मा बाप को देखा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाप को देखा आदि देव होते हुए, सबसे ऊंची आत्मा आदि देव, सबसे ऊंची आत्मा आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। बाबा जगदीश बच्चे को कितना सम्मान देते थे। बाबा कहते थे इसकी बुद्धि 7 फीट लंबी है, इतना बाबा कहते थे। बहुत होशियार है ये बच्चा, बाबा से भी होशियार है, इतना बाबा उसके लिए कहते थे। क्योंकि सारे किताबें बाबा जो का जो सारा ज्ञान कैसे किताबों में डाला ये जगदीश भाई ने किया है ना, तो इसलिए बाबा उनकी बहुत महिमा गाते थे, अपने से भी आगे रखते थे। तो बाबा कहते हैं अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसलिए हरेक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। मेरे से किसी ने पूछा कि मम्मा को मम्मा सबसे पहले किसने कहा, हमने दादी जानकी से ये पूछा था कि मम्मा को मम्मा, क्योंकि वो भी सब बहनों की तरह ही थी, तो मम्मा को मम्मा ये सबसे पहले किसने कहा, तो दादी जानकी ने कहा बाबा ने कहा, बाबा ने कहा ये मम्मा है सबकी। तो बाबा ने मम्मा कहा तो सब ने मम्मा कहना शुरू कर दिया। ऐसे होता है ना, कई बार होता है कि ये मामा है तो एक ने मामा कहा सब उसको मामा ही कहने लगते हैं, ये मेरी बहन है तो सब उसको बहन ही कहेंगे, तो एक ने कहा तो सब उसको उसी नाम से कहेंगे। तो इसीलिए मम्मा ने सबसे पहले, बाबा ने सबसे पहले मम्मा को मम्मा कहा। और फिर दादी प्रकाशमणि, तो दादी कैसे बनी, दादी की बहुत विशेषताएं थी तो बाबा उनको बहुत सम्मान देते थे, हमेशा बाबा उनको पत्र लिखते थे। तो दादी इतनी सम्मानीय क्यों बनी, क्योंकि बाबा ने उनको इतना सम्मानीय बनाया, बहुत महिमा। इसलिए मुरली में देखो कुमार का बच्ची, कुमार का हन बाबा कहते थे, जनक बच्ची, कितना सम्मान देते थे बाबा उनको। तो बाबा कहते हैं सम्मान देने वाले ही, तो बाबा कहते हैं विश्व के सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। तो बाबा ने कहा कि ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसीलिए हरेक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, पहले दिया फिर कितना माननीय बन गए। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हैं। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की, ये आवश्यकता है, इतना नहीं देते हैं सम्मान जितना देना चाहिए। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है, और जितना ऊंचे होते हैं उतना और सम्मान दूसरों को देना होता है, वो उतना ही निर्माण बनता है जितना ऊंचा होता है। तो फिर बाबा कहते हैं सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। वो सम्मान दिया और उसने फिर सम्मान पाया और सम्मान दिया, वो जैसे विधाता बन जाता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? सम्मान वाला स्वमान में भी सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? कि जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल को मिलती है वो दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। वो दुआएं ही अंदर का स्वमान याद दिलाती है। दादी प्रकाशमणि से किसने पूछा, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? दादी कहती है मेरा पुरुषार्थ तो धीरज कम है, 20%, बाकी 80% सबकी दुआएं। बाबा दादी नहीं कहती थी मेरा पुरुषार्थ, कहती थी दुआएं, मुझे दुआएं चला रही है। तो दुआएं किस आधार पर चलाती है? जब दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, तब सम्मान मिलता है। तो बाबा कहते हैं जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वो दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। वो दुआएं मिली तो अंदर से स्वमान तो जागृत होता ही है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो, सबको सम्मान दो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? कैसी कैसी आत्माएं बाबा के सामने आई, बाबा ने किस नजर से देखा? मेरा सिक्की लदा लाडला बच्चा, बाबा ने ऐसे ही कहा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा। तो सम्मान दिया और आप स्वमान धारी बन गए। बाबा ने आपको सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। तो फॉलो फादर, बाबा भी स्वमानधारी बन गया सम्मान देकर, तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, सहज बनना चाहते हो सर्वगुण संपन्न, तो सम्मान दाता बनो, तो सर्वगुण अपने आप आ जाएंगे। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती है? सहज है, कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? सबको सम्मान देना सहज है या सब कुछ को देना सहज है और थोड़ों को फिर मुश्किल भी है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई को मुश्किल है या सभी को देना सहज है सम्मान? आपका तो टाइटल ही है। अब क्या टाइटल है बच्चों का? सर्व उपकारी। तो सर्व उपकार में ये भी तो आ गया ना सम्मान देना। आपका टाइटल है सर्व उपकारी, उपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो सर्व उपकारी। अब किस किस में सर्व उपकारी? दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपनी संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है, ये इंतजाम करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, कर रहे हैं ये नहीं, तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे, अब मुरली तो इतनी तक अभी बाबा चिटचैट करते हैं, बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। तो जो पहली बार आए हैं, बाबा उनसे पूछ रहे, तो जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, तो बहुतों ने हाथ उठाया पहली बार, इसमें भी है क्या पहली बार, जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ। अच्छा पहली बार आए हैं, भाई भी है पहली बार आए, भले पधारे बाप के घर, भले पधारे, वेलकम, भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, तो फिर बाबा ने पूछा सेवा का टर्न किसका है, तो सेवा का टर्न कर्नाटक का है। उस समय कर्नाटक वाले आए थे सेवा के लिए, कर्नाटक वाले उठो, बाबा ने उनको उठाया, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है सीजन की पहली मुरली, पहला बाबा का टर्न, तो उसमें पहला नंबर कर्नाटक वालों ने लिया। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर में ही रहना है ना, पहला नंबर लिया है सीजन का तो पहले नंबर में ही रहना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सब में पहला नंबर लेने वाले, नंबर दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है हिम्मत। कर्नाटक वाले उठो, कर्नाटक वाले हाथ उठाओ, बहुत होंगे कर्नाटक वाले, यहाँ देखो हाथ उठा रहे। तो बाबा कहते हैं अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया, सेवा के लिए आए हैं तो पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा कर्नाटक में मेगा प्रोग्राम किया है, उस समय दादी जी ने कहा था सब मेगा प्रोग्राम करो, 1,00,000 की सभा बुलाओ, 1,00,000, तो सबसे पहला ये 1,00,000 की सभा अहमदाबाद वालों ने किया, स्टेडियम ले लिया, वहां तो 1,00,000 से भी ज्यादा बैठ सकते हैं, तो सारा खचा खच भरा हुआ था वो स्टेडियम अहमदाबाद में। फिर दूसरा फिर बॉम्बे ने किया, फिर पता नहीं दिल्ली ने किया, फिर बाबा, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं अच्छा कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है, तो कहा नहीं किया है। तो बाबा पूछ रहे क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया, कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। तो किसी टीचर्स आगे बैठी थी तो उन्होंने कहा बाबा बैंगलोर में करेंगे, पता नहीं किया या नहीं मालूम नहीं, तो उस समय का बाबा बैंगलोर में करेंगे। अच्छा जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वो हाथ उठाओ, तो कितने प्रोग्राम हो गए, बाबा ने पूछा, तो कहा कि 8-10 हो गए, हो चुके हैं। तो कहा 1,00,000 नहीं आए, 50,000 तो आए, बड़ा प्रोग्राम मेगा प्रोग्राम किया पर 50,000-60,000 ऐसे भी आए, तो 1,00,000 तो 8-10 ने किया। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं, 19-20 जोन तो है, तो जोन कितने हैं, हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलहना देने वाले उलहना नहीं देंगे, बड़े प्रोग्राम करो तो उलहना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं सारे शहर में उस बड़े प्रोग्राम के कारण, तो चाहे मीडिया द्वारा चाहे पोस्टर होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो तो उलहना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है, हाँ कहीं भी जाते हैं बड़ा प्रोग्राम, दादियां जाती है तो सारे शहर में दादी जानकी का फोटो, दादी जी का फोटो, या भी जयंती बहन जाते हैं या हम लोग भी जाते हैं तो कई बार देखते इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रोग्राम तो बड़े किए उसकी तो मुबारक है, अब तो बाबा कहते हैं बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन फिर बाबा लेकिन कहते हैं, लेकिन है प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए, वो ब्राह्मण बन जाना चाहिए, बन जाने चाहिए कम से कम 108। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000 उतने बन जाए, उतने बाबा के बच्चे बन जाए उस बड़े प्रोग्राम से। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। दिल्ली में 1973 में बहुत बड़ा मेला लगाया था, 73 में बहुत बड़ा मेला, और सब तरफ से जो भी थे सबको बुलाया था, हर एक का पेविलियन था, हर एक जोन का बहुत बड़ा था, हजारों लाखों आए। परंतु फिर बाबा ने पूछा कि कितने निकले, बोला एक निकला, एक निकला 1,25,000 बराबर। पर वो सचमुच जो एक निकला ना, हमारे जज साहब थे, अब तो दो, वो बहुत बहुत इतनी सेवा की, जो अनेक जजों को ले आया, अनेक वकीलों को लाया, भले एक निकला, बाबा ने उसको मुबारक दी 1,25,000 बराबर तो बहुत उसकी उसने सेवा की। तो बाबा कहते हैं, तो उन्होंने सबकी एड्रेस तो आप, हाँ, लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतनी संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। फिर फीडबैक लेते हैं ना, तो फिर उनका एड्रेस लेते हैं, उनका फोन नंबर लेते हैं, उनका ईमेल एड्रेस लेते हैं, तो सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनके पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ फॉलो अप करना चाहिए, एक बार आए हैं तो फिर उनको निमंत्रण दो, फॉलो अप करो, ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाए, किस शहर का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना, हो तो सकता है ना, थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकलते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। जब हर ग्रुप में बाबा फर्स्ट टाइमर्स को उठाते हैं, पहली बार आए हुए को, और इतने उठते हैं तो बाबा कहते हैं इतने पहली बार आए हैं इससे सिद्ध है कि सेवा बहुत अच्छी की है, तभी तो इतने आए हैं ना पहली बार। तो विदेशियों को भी हम देखते हैं, उठाते हैं उनसे हाथ कि जो पहली बार आए हाथ उठाओ, तो कितने उठते हैं, माना कितने उन देशों में सेवाएं हुई है। तो नए नए देशों में भी बहुत सेवाएं होती रहती है। तो बाबा कहते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना पांडव, ठीक है, तो देखेंगे नंबर वन कौन है, कितने भी निकालो, निकालो जरूर, वो ब्राह्मण बन जाने चाहिए। क्या है, बाबा कहते हैं प्रोग्राम जो हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, उसका फॉलो अप करे, उसको फिर से कांटेक्ट करे, ये बाबा कहते कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, बाबा मुबारक देते हैं। समझा? अच्छा अच्छा, अभी सब एक सेकंड में, एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ बन जाओ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में एक सेकंड में बार बार करो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, एक सेकंड में बार बार करो ये ड्रिल। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। ये ड्रिल करो। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को, बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी दादी जी, ये 2004 की मुरली है, दादी जी बाबा के सामने आई है, तो बाबा दादी जी को कहते हैं सम्मान देने में नंबर वन पास है। दादी प्रकाश मणि सम्मान देने में नंबर वन पास है। कितना सबको दादी सम्मान देती थी। अच्छा है, सब दादियों से मधुबन की रौनक है। सब दादियां पहुंच जाती थी मधुबन में जब बाप दादा का प्रोग्राम होता था, तो सब दादियों से मधुबन की रौनक है। फिर बाबा ने सभा में पूछा, इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? हाँ, आप सभी को, जितनी दादियां बाबा के सामने बैठी, तो बाबा पूछते हैं कि इन दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? हाँ, तो सब ने ताली बजाई, खूब दादियों को देख के इतने खुश होते हैं बाबा के बच्चे। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी तो नहीं पर दीदियां और दादे तो हो। सब दीदियां और दादे तो हो ना, अभी जितनी भी टीचर्स बहने हैं सबको ये कहते दीदी दीदी दीदी, अब भले दादी नहीं कहेंगे, भाई दादी कौन, वो सफेद बाल वाली जो होगी वो दादी, लेकिन दीदियां तो हो, तो इसीलिए क्योंकि दादी, तो बाबा कहते हैं क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हो ना, कम नहीं हो, सुना दीदियां कम नहीं हो, सब टीचर्स हाथ उठाओ, सब आपको दीदी दीदी कहते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते आप भी कम नहीं हो, दीदियां आप भी कम नहीं हो, दादे भी हैं। अब जो सीनियर्स है यहाँ जाओ, 30 साल से ऊपर ज्ञान में हाथ उठाओ भाई, 30 साल से ऊपर ज्ञान वाले। हाँ देखो कितने, ये सब दादा दादे बैठे हैं, पापा उनको दादी कहते हैं, 30 साल से ऊपर है, ये एक विदेशी भी हाथ उठा रहा है 30 साल से ऊपर, इज योर हैंड ब्रदर, या यू, यस इज योर हैंड ओवर 30 इयर्स, देखो ये 30 साल से ऊपर है, हॉलैंड का भाई है, खड़े हो जाओ प्लीज, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप, 30 साल से ऊपर बाबा का बच्चा है, मूव अराउंड, या वेरी गुड। तो कल बता रहा था, ये भी है, ये भी है 30 साल से ऊपर, वो भी है क्रिस्टीना, हाँ ये भी है, और मार्टीना भी है, ये भी है, देखो ये सब 30 साल से ऊपर है बाबा के बच्चे विदेशी, ये भी है। हाँ बहुत अच्छा, देखो बाबा कहते उनको दीदी कहो या दादा कहो, यू आर दादा ब्रदर, यू आर दादा। तो बाबा कहते हैं दादे भी हैं और दीदियां भी हैं, तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, वहां दीदियां भी हैं और दादे भी हैं, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो, तो जिस भी स्थान पर हो वो रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक तो बहुत है, कल भी बाबा ने कहा ना 7 वंडर्स, रौनक कितनी होती है वहां देखने जाते हैं 7 वंडर्स को, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी शांति और अति इंद्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान का वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, दादी जानकी तो देखो सबको नचाती थी, सबको नचाती थी और खुद भी नाचती थी। दादी जानकी बहुत बहुत कैसे लाइट रहती थी। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दादियां और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वो पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं। कितना प्यार कर रहे हैं बाबा, रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर वन तीव्र पुरुषार्थी भव, इतने पत्र आते थे, क्या क्या कार्ड भेजते थे, बहुत बच्चे अभी भी भेजते हैं, अभी भी मिलते हैं, ज्ञान सरोवर में ग्लोबल ऑफिस में रख के जाते हैं बड़े बड़े कार्ड। तो बाबा कहते हैं दूर बैठे भी नंबर वन तीव्र पुरुषार्थी भवन वरदान। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव, साक्षात्कार मुहूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएंगी। तो अब सदा जागती ज्योति बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मुहूर्त बनो। हमने तो देखा उस दिन बाबा के प्रोग्राम में वो कुंभकर्ण का चित्र, कुंभकर्ण को एक वो रखा है ना शोकेस में, तो ये जहाँ जहाँ व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम होता है ये कुंभकर्ण जरूर साथ में ले जाते हैं, और वो कुंभकर्ण को देखने कितने लोग जमा हो जाते हैं कुंभकर्ण को देखने, कैसे वो जाग जाता है और जैसे जागता है सब तालियां बजाते। तो बाबा कहते हैं तो अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। अच्छा, स्लोगन, तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। ईश्वर सत्य है कहते हैं, तो परमात्मा को कौन प्रिय है? सत्य प्रिय है। सत्यता ही बाप को प्रिय है। बच्चे दिल पर साहिब राजी है, सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत होगा। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक सूचना आपको दे रहे हैं, आज रविवार है तो मोहिनी दीदी शांतिवन से खास आएंगे, पांडव भवन आएंगे और यहाँ शांति स्तंभ पर योग कराएंगे, और ज्ञान सरोवर में भी बहुत डबल विदेशी है, तो सब डबल विदेशी भाई बहने शांति स्तंभ के अंदर बैठेंगे शाम को 6:30 बजे। 6:30 बजे के अंदर सभी डबल विदेशी शांति स्तंभ के अंदर बैठेंगे योग करने। मोहिनी बहन भी आ जाएंगे और बाकी जो भारत वाले हैं अगर वो शांति स्तंभ पर करना चाहते हैं तो बाहर बैठेंगे, या फिर मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल, तो वो तो है ही, बाबा का कमरा भी है ही है, लेकिन शांति स्तंभ के अंदर केवल डबल विदेशी बैठेंगे। बहुत है, डबल विदेशी भी आए हुए हैं और कल काफी जाने वाले भी हैं, लेकिन आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया हम पांडव भवन में योग करें और खास मोहिनी दीदी आ रही है, तो इसीलिए भारत वाले थोड़ा विदेशी भाई बहनों को चांस देंगे शांतिवन शांति स्तंभ पर बैठने का। तो ये ध्यान देंगे 6:30 बजे मोहिनी दीदी आएंगे और योग कराएंगे। और एक बहुत बड़ी सूचना है कि एक ऑफिशियल सूचना है, अवतार भाई ने भेजी है, केंद्रीय व राज्य सरकार के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा विशेष प्रशिक्षण, आज प्रशिक्षण का एक प्रोग्राम है मेडिटेशन हॉल में। पहला, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा नियमों की जानकारी। दूसरा, फॉस्टेक ट्रेनिंग व सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम। तीसरा, फूड सेफ्टी व हाइजीन की जानकारी। चौथा, ये कार्यक्रम सवेरे 11 बजे, अच्छा 11 बजे शाम 11 बजे है दिन में, ये कार्यक्रम आज सवेरे 11 बजे मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में होगा। पांचवा, किचन जिसमें भोजन, रोटी, दूध, चाय, टोली, बर्तन व परोसने वालों का आना अनिवार्य है, ये ट्रेनिंग ये सब आएंगे ऊपर मेडिटेशन हॉल में 11 बजे। ये ट्रेनिंग पहले 24-25 तारीख को होना था जो आज ही है। इसमें किचन व किचन से संबंधित सभी भाई बहनों का आना अनिवार्य है, जो भी किचन में सेवा करते हैं,
जो भी किचन के समर्पित भाई बहने हैं उनका आना है। जो मिलेगा
जो किचन में समर्पित भाई बहने, किचन की सेवा में है समर्पित भाई बहने, क्या सर्टिफिकेट,
हाँ उनको सबको सर्टिफिकेट,
हाँ उन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसीलिए सभी को आना है। ये जो जो जिस डिपार्टमेंट के है जो बताया, तो ये पहले 24-25 तारीख को होनी थी लेकिन ये आज ही होगी 11 बजे। तो किचन व किचन से संबंधित सभी भाई बहनों को आना अनिवार्य है और जो समर्पित भाई है उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे कल भी बताया, रोज बता रहे हैं कि जो भी शांतिवन से आए हुए भाई बहने हैं उन सबका नाश्ता और भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होगा, इसीलिए ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाएंगे नाश्ता करने, नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि नीचे फिर और किचन की और भी तैयारी होती है, इसीलिए नीचे नहीं ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाएंगे नाश्ता भोजन करने। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे।